राधा कृष्ण बल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बल बल राधा कृष्ण बल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बल बल यही शिक्षा दिया सबना दिया फिर के ने के गौर निताये शिक्षा दिया सब न दिया के ने के गौर निताये राधा कृष्ण बल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बल मायार बसे जाच भेसे खाच हाबू डूबु भाई मीछे मायार बसे जाच भेसे खाच हाबू डूबु भाई राधा कृष्ण बर बल रे सबाई राधा कृष्ण जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो यार दुख नाही जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो यार दुख नाही राधा कृष्ण बल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बल कृष्ण बल दे जबे पुलक हावे छाड़ दे आँखी बोलिताई कृष्ण बल बे जबे झापुरक हवे झाड़ दे आँखी बोलिताई राधा कृष्ण बल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बल बल कृष्ण बल बे जबे राधा कृष्ण बल संगे चल यही मात्र भिक्ष चाही राधा कृष्ण बल संगे चल यही मात्र भिक्ष चाही राधा कृष्ण बल 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 रे सबाई राधा कृष्ण जाय सकल विपद भक्ति बैनद बोलन जखन ओ नाम गाई जाय सकल विपद भक्ति बैनद बोलन जखन ओ नाम गाई राधा कृष्ण बल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बल 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 रे सबाई भक्ति ठाकुर को अभिनंदन दिया जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय जय नित्य परम से परिपय श्री श्रीमदेश श्री भक्त दर्शनामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय नित्य परम पूरे बजरष्टोत्र सदस्य ठाकुर गुरुपाद की जय। ठाकुर भक्तों आविर्भाव तिथि की जय। भक्तों ठाकुर आविर्भाव के हरि कीर्तन महोत्सव की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। श्री गुरुपाद की जय। निताय गोदमानंद नाम श्रेष्ठ मनुमपी शुचिपुत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मरुपरिमाश्रृंगोष्ठवादिं राधाकुंड गिरीवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तरिष्यपेदिकृतां श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पैतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनापराधलोके क्षिप्रादिकमादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिभक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। सासुखनिवेदितास्तदिबुद्धस्तनभावत्पजीतरुचिलाकृष्टसारस्त्रियं रतनतु कृपाञ्जस्तत्वदीपं पुराणं तमकुलप्रियजनां व्यशसोऽनुनतोऽस्मि। भवे भव यथा भक्तिपादस्त्वजाते तथा कुरुषदेवेशनाथस्नजतप्रभो नाम संकीर्तनयशसर्वपापप्रणाशनं प्रणामुदुकशमनस्तु तं नमामि हरिपरम्। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुभवरायते। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 5 श्लोक नंबर 19। गोपान गोकुलरक्षयां निरुप्यां मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिकं करं दातुं पुरु उद्वह। गोपान गोकुलरक्षयां निरुप मथुरांगत नंध कंस्य वार्षिक परंग दुकुरुद्व। गोपान गोकुलरक्षाया निरुप मथुरांगत नंद कंस्य वार्षिक परं दातु कुरुद्वह। गोपान गोकुलरक्षायां निरुप मथुरांगतः नन्दः कंसस्य वार्षिकं परं दातु कुरुद्वह।
गोपान गोकुलरक्षायां
नन्दा
गोपान ग्यारह को गोकुल रक्षायाम गोकुल मंडल के रक्षा के लिए निरुप नियुक्त करके मथुराम मथुरा गतः गए नंदः नंद महाराज कंसस्य कंस का वार्षिकम वार्षिक कर करम लाभांश दातुम भुगतान करने के लिए कुरु उद्वह हे कुरु वंश के रक्षक महाराज परीक्षित अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा हे महाराज परीक्षित हे कुरु वंश के सर्वश्रेष्ठ रक्षक। उसके बाद नंद महाराज ने स्थानीय ग्यालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया और स्वयं राजा कंस को वार्षिक कर देने मथुरा चले गए। तात्पर्य क्योंकि बालक का वध किया जा रहा है वह सबको ज्ञात हो चुका था, अतः नंद महाराज अपने नवजात शिशु के लिए अत्यधिक डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने घर तथा शिशु की रक्षा के लिए स्थानीय ग्वालों को नियुक्त कर दिया। वह तुरंत ही मथुरा जाकर कर भुगतान करना चाह रहे थे और अपने नवजात शिशु के उपलक्ष्य में कुछ भेंट भी देना चाहते थे। वह शिशु के सुरक्षा के लिए विभिन्न देवता तथा पितर को पूजा कर चुके थे और सबको जी भर कर दान भी दे चुके थे। इसी तरह नंद महाराज कंस को न केवल वार्षिक कर चुकता करना चाह रहे थे अपितु कुछ भेंट भी देना चाह रहे थे जिससे कंस भी तुष्ट हो सके। उनकी एकमात्र चिंता यही थी कि अपने दिव्य शिशु कृष्ण की किस तरह परीक्षा करे। अभी इंटरनेट में टैक्स भरता है, इधर जाने का आवश्यक नहीं है, लेकिन उस समय ये सब नहीं था, जाना पड़ता था, नहीं तो वो लोग आकर के लेकर जाता था, अगर नहीं दोगे तो सब कुछ लुटपाट करके चला जाता था। ये सबसे बापी नंद महाराज उन्होंने दोनों काम एक साथ में करना चाहा। चाणक्य नीति कहते हैं दुष्ट से सदा सर्वदा भयभीत रहना चाहिए, क्योंकि वो कब क्या करेगा कहीं नहीं जानता है। उसको अगर संतोष रखना चाहते हो तो उनका चपलासी करो, वो खुश रहेगा। तो नंद महाराज भी ऐसे करना चाहा, दोनों काम एक साथ। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। दोनों काम एक साथ में करना चाह रहे थे, एक तो अपना टैक्स, दूसरा पुत्र हुआ इस खुश में कुछ उपहार, वो भी खुश हो जाएगा, चलो हमें कुछ दिया, इस विचार करके उन्होंने गोकुल को रक्षा के लिए गोपलोक को नियुक्त कर दिया और स्वयं मथुरा चला गया। यहाँ पूर्वह हे कुरुकुल तिलक महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी खुश हो गया। तो कृष्ण का कथा वर्णन करते करते उनका इतना खुशी हुआ जो उनको प्रकट उन्होंने इस भाव से किया हे कुरुकुल तिलक महाराज परीक्षित। आप सुन रहे हो ना, इतना खुश है। तो भगवान का प्रकट अप्रकट लीला, इसलिए गोकुल और गोलोक, गोलोक में अप्रकट लीला होता है और गोलोक का प्राकट्य भूमि जो है उसको गोकुल कहते हैं, वा गोकुल का वैभव गोलोक है। और गोकुल से गोलोक आने जाने के लिए कितना समय लगता है, पग उठा के उधर डाला गोकुल आ गया, पीछे लिया गोलोक आ गया। अगर सिद्धि लाभ करोगे तो याद रखना मिल जाएगा, विशेष विचार जो गोपाल चंद को दिया गया है। बस एक पग इधर इतना ही जानना है, जैसे हम लोग को नीचे और ऊपर है ना, जो आप सिद्धि लाभ करके वहाँ जाओगे तो वहाँ से अगर इधर आना है तो आपको पग बढ़ाने से गोकुल में आ जाओगे और पग पीछे खींचने से गोलोक पहुंच जाओगे। वही गोलोक और गोकुल के जो नित्य स्थिति धरातल पर ये दिखाया जाता है, तो वहाँ अपना भौतिक जगत में वा जड़ प्रपंच, इस प्रपंच में भगवान का धाम का नित्य स्थिति है। प्रलय हो चाहे ना हो, कुछ हो जाए चाहे ना हो जाए, भगवान का धाम नित्य सदा सर्वदा प्रलय के ऊपर विराजित तो रहते हैं। यहाँ पर भगवान का जो लीला विलास चलता है, इसमें ज्यादातर अपनत्व भाव ज्यादा होता है, कुछ हो जाए, लेकिन गोलोक में इस प्रकार है ही नहीं है। गोलोक में यद्यपि माइक जितना सारे वस्तु सब वस्तु का प्रतिकृति वहां पर विराजित है, और उस प्रतिकृति के द्वारा कभी कभी अपवाह फैला जाता है, और उस अपवाह के द्वारा गोकुल लोक अपने आप को उस लीला में इस प्रकार सामंजस्य करता है, लोग को कुछ मालूम भी नहीं है हम लोग किस जगह में है। और भगवान की लीला एक तो भगवान की लीला कहा गया नित्य लीला कहा गया है, एक लीला गोलोक में सदा सर्वदा चलते रहता है, एक लीला गोकुल में चलते रहता है। जो लीला यहाँ समापन होता है उस लीला का वहां पर चलते रहता है, और जो लीला यहाँ चालू नहीं हुआ वो लीला वहां से इधर लाया जाता है। जैसे क्या बोला गया उसको, टीवी, टीवी में एक कार्यक्रम सेटिंग किया रहता है, और टीवी का जो सेंटर होता है वहां से वो कार्यक्रम को प्रसारित किया, उसके पास स्टॉक है ऑलरेडी, और स्टॉक को प्रसारण कर रहा है। तो प्रसारण जब कर रहा है, ये 8 से 9 बजे प्रोग्राम, 9 बजे हो गया, उससे 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया, वही है। तो हमारे जो गोकुल का जो प्रोग्राम है, गोलोक का प्रोग्राम गोकुल में प्रतिफिलो तो होते रहता है, लेकिन गोकुल का जब वो लीला होता है उस लीला में माइक जोनोचित माइक आकारित माइक भाव में दर्शाया जाता है, क्योंकि भगवान इस जगह में नरतनु भजनेर मूलम, भगवान का भजन करना जितना नरतनु में सुविधा है उतना देवत्व में नहीं है। कि भगवान नृसिंह रूप में आए तो इतना भजन नहीं कर सकते हैं, जितना राम रूप में आएंगे बा कृष्ण रूप में आएगा बा गौर सुंदर रूप में आएगा, क्योंकि उस भजन में और उसमें थोड़ा संभ्रम रहेगा, इसमें संभ्रम नहीं रहेगा। तो गौर सुंदर को कौन जानता है भगवान है, कृष्ण को कौन जानता है भगवान है, ये लोग समझ नहीं पाया, कृष्ण सबका साथ भूल मिल के रहा, ये सब समझते जो हमारा जैसे मनुष्य है, इसलिए माया भविष्य नरतनु ऐसे लिखा गया है। उसमें जितना मिलाप होता है देवत्व में आविर्भाव होने से अपना मिलाप भगवान का साथ नहीं होता, उसमें संभ्रम हो जाता है, इसलिए शांतवाद दार्शत्व भी उसका लिमिटेड है, उसको आगे नहीं जाता है। तो बाकी में ये सौख्य वात्सल्य माधुर्य ये सब में जा जाता है। ये भगवान का जो नर लीला है, और इस नरलीला का सर्वोपयोगी जो लीला विषय है, उस लीला विषय में नरलोक के लिए नरबपु में आविर्भूत होने के नाते माइक जगत का माइक बुद्धियुक्त व्यक्ति उस लीला में आकृष्ट होकर के उस लीला का ग्रहण अगर करता है तो अप्राकृत गोलोक जा सकता है, इस लीला का विशेषता है। इसलिए भगवान जो उनका जो रूटीन है दिन में एक बार, इसका दिन में ब्रह्मा का, हमारे दिन में नहीं, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार भगवान अवतीर्ण जरूर होंगे। तो भगवान आविर्भूत हुआ और हम लोग ने उस लीला का श्रवण कीर्तन करते हैं, यही श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया 11 कंठों में, कि जब तक भगवान का लीला कथा का श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तब तक अप्राकृत जगत में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि भगवान का लीला कथा इतना आकृष्ट करने वाला है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी अपना पिता वैष्णव ने श्रवण करने के बाद उन्होंने इसका वर्णन कर रहे हैं तो कितना खुश हो गया, तो ये वर्णन करने से उतना खुशी होता है। तो नंद महाराज वार्षिक कौर प्रदान करने के लिए अपना ब्रज में जो उनका सैनिक लोग है, उनको बोला आप लोग थोड़ा ब्रज को देखभाल करो, हम जा रहे हैं, समय कम है, भक्तिन ठाकुर कुछ बोलने का है, इसलिए इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। आज जिस जिसका वजह से कहना अच्छा रहेगा, हम लोग हरि भजन करने के लिए उत्साहित तो हुए हैं, उनका आविर्भाव तिथि है, प्रणाम मंत्र कैसा है, नमो, हम प्रणाम कर रहे हैं, जैसे भागवत ने ब्रह्मा ने प्रणाम किया, नमुद्धे तहब्र बपुसे तोड़िकम बराय, कोई क्रोध में हो उसका सामने जा करके मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, तो अगर 100 है तो 50 में आ जाएगा, अगर किसी कारणवश उनको अगर मतलब देश भी हो गया है और उनको ये मालूम पड़ गया व्यक्ति हमसे देश कर रहा है, फिर भी देशी व्यक्ति अगर जाके उनको जाके प्रणाम करे, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, तो देश का आधा ह्रास हो जाता है, ये प्रणाम का इतना महत्व है। केवल मात्र भगवान का प्रणाम करने से भगवत धाम जा सकता है, इतना भक्तियों को पावरफुल, बाकी कुछ भी ना करे चलेगा, ओनली भगवान का अगर प्रणाम किया जाए तो भगवत धाम जा सकता है। इसलिए कहते नमो भक्ति विनोदाय, भक्ति का विनोद, विनोद मतलब लीला, जो भक्ति का लीला का विस्तार किया, इतना भाव में विस्तार किया, असंख्य भाव में, उन्होंने सर्वप्रथम ये मठ का स्थापन किया था, इससे पहले मठ नहीं था, जो हम लोग जो इस्कॉन जो देख रहे हैं बा गौड़ी मठ बा कोई संस्था जितना भी है, इससे पहले था नहीं, उन्होंने सर्वप्रथम पपन्न आश्रम बोल के स्थापन किया, जहाँ पर शुद्ध भक्त लोग निवास करके भजन कर सके। ये मठ का निर्माण का अर्थ क्या है, इसका बाह्यिक कारण और अंतरंग कारण दो कारण है। बाह्यिक कारण ये है कि बहिर्मुख लोग उस जगह में आकर के भगवान का दर्शन करेगा और वहां पर निवासी भक्तों का साथ हरि कथा श्रवण का आनंद लेगा, एक कारण है। दूसरा कारण, जो निष्किंचन भाव से भजन करना चाहते हैं वो मंदिर में निवास करेगा, एक कारण। इसका बाद में जितना सारे कारण अपना लिया जाता है वो सब गलत है, ये दो ही कारण जो है मुख्य है, क्योंकि वर्तमान समाज व्यवस्था जिस प्रकार हुआ है उस समाज व्यवस्था में आप कोई पेड़ का नीचे व जंगल में जाके भजन कर नहीं सकते हैं, वो वृंदावन आशय ऐसे वृंदावन, यद्यपि वृंदावन वृंदावन है, लेकिन आज का वृंदावन क्या हो गया, कंक्रीट का फैक्ट्री। गोस्वामी के समय का वृंदावन क्या था, जो नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखते हैं ना, नव किशोलय करके हरा भरा ब्रज, वास्तव में ब्रज हरा भरा ही, हमारा दृष्टि में उल्टा पलटा हो गया, ब्रज में कुछ फर्क नहीं आता है, ऐसे फिर भी बाह्यिक दृष्टि से हम लोग दर्शन करते हैं, भक्ति का जो विनोद लीला ये भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे कहते, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग बढ़ाते हारूप गोसाई दया करी कवे दिवे दिने ब्रज भाषा रागात्मिका तुम तब पदानुग हईते दासर आशा रूपानुग भजन प्रणाली। रूप गोस्वामी कुछ लिख के गए हैं, उन्होंने जो रचना करके किया वो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाया। उस रचना को दोबारा परिभाषित तो करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में आ गए रूपो गोस्वामी, दोबारा परिभाषित तो करने के लिए। रूपो गोस्वामी क्या बोलता है, दुर्गमं सुगमं तस्य भवेद्यस्य प्रसादत राधा कृष्ण लीला रसो मग्नो सिंहद रूपं नमामितम। रूप गोस्वामी प्रमाण दुर्गम संगमिनी टीका भक्ति रसन सिंधु लिखने से पहले जीव गोस्वामी पाद ने रूप गोस्वामी प्रणाम किया। दुर्गम सुगम तत्व भवेद्यस्य प्रसादत राधा कृष्ण रसो मग्नो सिंहद रूपं नमामितम। इस दुर्गम वस्तु को सुगम करने के लिए भक्ति वस्तु दुर्गम है, इसको सुगम किया रूप गोस्वामी पाद ने। और उनको सुगम करने के लिए जो जिन्होंने किया उस रूप गोस्वामी पाद को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। यही भक्तिविनोद ठाकुर रूपानुगम, रूपानुग बरायते, रूपानुग श्रेष्ठ। तो उन्होंने जो रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी पाद का जो विचार जो वस्तु है, उस विचार जो वस्तु कम से कम 450 साल तक विभिन्न धारा में जाकर के ये सहजिया पंथ में आ चुका था। लोग वैष्णव का नाम सुनने से टिकटिक मारते थे, वैष्णव आ गया, बड़ा वैष्णव है, वैष्णव है, भीख मांग के खाएगा, चुटकी खींचेगा। वैष्णव का कोई सम्मान ही नहीं था। आज जो सम्मान हमें मिल रहा है, किधर भी जा रहे हैं किधर भी आ रहे हैं, ये भक्तिविनोद ठाकुर का अवदान है। तो इसका फाउंडेशन भक्तिविनोद ठाकुर ने किया। जिस प्रकार ये जो भक्ति का पहाड़ जो अट्टालिका है, इसका फाउंडेशन कौन किया था, श्रीमद शंकराचार्य ने। सब लोग जानते नहीं है, सब लोग शंकराचार्य को मायावादी कहते हैं, लेकिन हम लोग का शास्त्र में जो गौड़ीय शास्त्र, इसमें किसी जगह में श्रीमद शंकराचार्य कहा गया है। क्योंकि अगर शंकराचार्य नहीं रहते थे तो ये गौड़ीय जो जो भक्ति का जो भित्ति है ये फाउंडेशन नहीं हो सका। इन्होंने जो शून्यवाद वस्तु था प्रच्छन्न बुद्ध मुच्यते, इनको उच्छन्न किया था उन्होंने और भक्ति का स्थापना किया था। उस फाउंडेशन में आज भक्ति का विचार जो हुआ और भक्तिविनोद ठाकुर समस्त अपसंप्रदाय को अपना शास्त्र युक्ति के द्वारा खंडित करके क्या किया उन्होंने, आज जो भक्ति गंगा कल कल शब्द में बह रहे हैं, जैसे गंगा बहते हैं ना, उस प्रकार भक्ति बहते रहते हैं। ये भक्तिविनोद ठाकुर का विशेष अवदान। जो गौरव धारा लुप्तप्राय वाणी, गौरव वाणी का प्रचारक महाप्रभु का जो वाणी था, उस वाणी का विविध जायगा में, विविध भाव में, विविध रूप में, विविध आकार में, विविध भाव में उन्होंने प्रचार किया है। शिव विग्रह का स्थापना करके, धाम का आविष्कार करके, हरिकथा का परिवेशन द्वारा, अपना नामहट्ट का झाड़ूदार रूम में क्या क्या नहीं किया उन्होंने। अपना जो सांसारिक इनकम होता था, उस इनकम के द्वारा उन्होंने मृदंग करता खरीद करते थे और उस पैसा के द्वारा बुक प्रिंटिंग करते थे। जगत में जगतवासी को जानने के लिए रूपा जी कहते हैं, ये तुम्हारा क्या बोलता है, एक घंटा का लेक्चर कुछ काम का नहीं है, लेकिन एक बुक अगर तुम किसी को दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। सर्वप्रथम उन्होंने उस समय बुक का इतना ये नहीं था, उन्होंने कुछ बुक पढ़ने के लिए, जैसे शॉर्ट संदर्भ पढ़ने के लिए उसको क्या करना पड़ता था, उसको किधर मिला था उसको कॉपीराइट करना पड़ा था। किसी ने भक्तिविनोद ठाकुर को श्रीमद भागवत ग्रंथ प्रदान किया था दान में, तो इसे भक्तिविनोद ठाकुर का बाल्यकाल में उनका कायस्थ परिवार में जन्म ग्रहण हुआ था, उनका नाम था पुरुषोत्तम दत्त, उनका 17 पर्याय, उनका नाम है गोविंद शरण दत्त, 17 पीढ़ी के बाद। और दिल्ली का जो बादशाह था उनका कृपा से गंगा तट में भूषण पुत्र प्राप्त हुए थे, वहां पर उन्होंने गोविंदपुर नाम का गांव का पत्तन किया था। बाद में ब्रिटिश लोग वहां पर अपना किला बनाया और उसका बाद उन्होंने उनका जो पुत्र लोग वो लोग हाटखोला में आकर निवास करने लगा, तब से उनका परिचय हुआ हाटखोला का दत्त परिचय दत्त। पुरुषोत्तम दत्त का एकविंश पुरुष में महानुभाव मदन मोहन दत्त जन्मग्रहण किए थे, जो अगर आप लोग गया श्रद्धा में कभी जाओगे किसी कारणवश वा गया दर्शन करने विष्णुपाद पद्म अगर दर्शन करने भी जाओगे तो वहाँ पर भी जो प्रेत शिला है वहाँ इन्होंने इसका निर्माण किया था। मेरा भी नसीब हुआ था बुरा के स्कूल के साथ किया था, मैंने भी गया बहुत दिन पहले जाके दर्शन करके आया। शाम को टाइम हम लोग गया था विष्णु पाद पद्म में दर्शन करने के लिए। वास्तव में चैतन्य भागवत जो वर्णन है ऐसा ही बहुत सुंदर। सुबह ऐसा कुछ नहीं था, सुबह खाली था, संध्या समय शुरुआत हुआ तो उनका मदन मोहन दत्त का पोता था श्री राजवल्लभ दत्त, उन्होंने साधक था, दैवज्ञ भी था, क्या बोलते उसको एस्ट्रोलॉजी। तो उन्होंने अपना स्वजन का उत्पीड़न से उड़ीसा में कटक चला गया और वहां पर विरूपा नदी का तट में छोटी गोविंदपुर गांव में निवास करने लगा। राजवल्लभ दत्त का पुत्र का नाम है आनंद चंद्र दत्त, तो उनका बहुत धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति थे। उन्होंने नदिया डिस्ट्रिक्ट का बीरनगर गांव में ईश्वर चंद्र मोस्तोबी महोदय का कन्या जगनमोहनी से शादी किया, उनका गर्भ में भक्तिनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। 1245 बांग्ला है, मतलब समझ लो 1345 लगभग इंग्लिश में। तो उनका जन्म का समय में जो ज्योतिष लोग देखा तो उन्होंने कहा ये भविष्य में बहुत बड़ा पंडित होगा। इनका पिता का दिया हुआ नाम था केदारनाथ दत्त। ठाकुर महाशय का जब वयस 11 साल हुआ तब उन्होंने पिताजी मर गया और उन्होंने अपना दादी के घर में निवास करने लगा। बीरनगर जो बहुत बड़ा बिल्डिंग था वो देखने के लिए बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर आते थे। भक्तिनाथ ठाकुर का दोनों भाई कालक्रम में अप्रकट हो गया। उन्होंने अपना लाइफ स्टोरी में लिखा है बहुत तकलीफ से उन्होंने अपना जिंदगी बिताया। 5 वर्ष में उन्होंने पाठशाला में जाकर के विद्या अभ्यास किया, 9 साल में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, थोड़ा समय के अंदर रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ बहुत अच्छी तरीके से पाठ किया। ठाकुर महाशय 12 साल में शादी किया था, उनका पत्नी का वयस था 5 साल। शैशव में सब लोग भूत का डर में डरते थे, भक्तिनाथ ठाकुर भी भूत का भय था, उन्होंने भी डरते थे। बागीचा में जाके पेरू जामुन चोरी करने में उसको डर लगता था, चोर था। एक दिन उन्होंने माँ को अपना दादी को पूछा, दादी भूत भगाने के लिए कोई मंत्र सिखाओ ना। बोला राम राम बोलो भूत भाग जाएगा। बांग्ला में पद्य है भूत भगाने का, बहुत सुंदर है। भूत हमार प्रेत पेतनी हमार जी राम लक्ष्मण बुके आसे भयटा हमार की, ये है बांग्ला भूत भगाने का मंत्र। ये बोलो और रास्ता में चलो तो भूत नहीं आएगा। इसे ठाकुर महाशय सदा सर्वदा राम 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 जप करते थे और बागीचा में जाके आम और जाम आराम से खाते थे आ लोगों को बोलता है चोरी करना है तो राम राम करो, चोरी करो, कोई तकलीफ नहीं होगा। जहां जहां पर रामायण महाभारत कीर्तन होता था ठाकुर वहां पर जाकर के राम जी का कथा सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था उनको। तो उन्होंने जो पुरोहित पुजारी था उनको पूछता था आपका ठाकुर बात क्यों नहीं करता है, तो उन्होंने कहता था कोलिकाल में ठाकुर बात नहीं करता है, मुझे क्यों लोग मांगते रहेगा इसलिए। तो कभी कभी उन्होंने शिव जी का मंदिर में घुस करके शिव जी का सिर में हाथ रख के भाग जाया था। आपको मौका मिलेगा दो जगह में, एक गोपेश्वर महादेव और महाकाल मंदिर उज्जैन में। गोपेश्वर महादेव में जाओगे तो पुजारी आपको पानी भी देगा, बोला शिव जी को ना रहा वहाँ मिलता है। और उज्जैन में गया था मैंने, वहाँ पर भी शिव जी में पानी डालो और शिव जी को अच्छा से घिसो, ये जो जगह। तो भक्तिम ठाकुर भी ऐसे ही करते थे, शिव जी का मंदिर घुस के उनका सिर में हाथ रख के दौड़ो और जो वयस्क लोग था उनको बहुत सारे भगवान का सामने प्रश्न जिज्ञासा करते थे। शैशव काल से उनका भगवान में बहुत अनुराग था। जगत क्या है भक्तिम ठाकुर लिखा है दशमूल में लास्ट श्लोक में, प्रभु का को जीव कथमिद मचित विश्व विधिमा विचार्ये तान तान हरिभजन किच्छास चतुर अभेदासं धर्मान सकल अपराधान परिहरण हरेर नामानंद पिबती हरिदास हरिजने। दशमूल का अंतिम श्लोक है। प्रभु का, प्रभु कौन है, को जीव, जीव क्या है, प्रभु का को जीव विचार्ये तान तान हरिभजन किच्छास चतुर, जगत क्या वस्तु है इस विषय में अच्छा से विचार करो। जो हरि भजन करना चाहते हो तो, अगर हरि भजन नहीं करना चाहते तो विचार करने की जरूरत नहीं। अगर हरि भजन करना चाहते हो, जगत क्या वस्तु है, जीव क्या वस्तु है, भगवान क्या वस्तु है, ये तीन को बोलता है वास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु वेदम शिवदम तापोत्र पूर्ण मिलनम श्रीमद भागवत महामुनि कृते कृंगा परेश्वर श्रद्धा हृदय वरुद्ध अत्र पृथ्वी सुश्रवीश तत्कना। ये तीन वास्तव वस्तु को जानना आवश्यक होता है। अभेदासंग धर्मान सकल अपराधान परिहरण, अभेदासंग धर्म अभेद, अभेद क्या है, भेदाभेद जिसको कहते हैं अचिंत भेदाभेद वो अभेद है। सकल अपराधान परिहरण, जितना सारे अपराध है उसको त्याग करो। हरेर नामानंद पिबते हरिदास हरिजने, हरेर नामानंद जयति जयति नामानंद मेतर मुरारे विरमित निज धर्म दान पूजादि जतनम कथमपि सविदत्तं प्राणिनां मुक्तिदं जात परम अमृतं जीवनं भूषणं मे। सनातन गोस्वामी नाम महिमा में लिखते हैं, ये जो जितना सारे भजन है सब भजन में नाम स्वर के कुछ सर्वश्रेष्ठ है। ये सकल अपराधान परिहरण, हरे नाम आनंद पिबती हरिदास हरिजने, हरि नाम का पान करो। कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भकती विनोद प्राण नाम बिना नहीं को किचू चौदह भुवन माझे। कौन इतना महत्व तो कौन दिखाया, ठाकुर भक्ति विनोद नाम बिना नहीं को किचू चौदह भुवन माझे। नाम छोड़ के कुछ भी नहीं। अघल मन जशोदा नंदन नंद सुनो कमल नयन गोपी जन, भगवान का नाम, ये नाम का महत्व। पिबती हरिदास हरिजन, हरिदास का संग में हरि नाम का आलोचना करो, बस हो जाएगा। तो ठाकुर भक्ति विनोद इस प्रकार नाम महिमा का प्रचार किया, प्रसार किया। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है, भजन रहस्य ग्रंथ है, अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है सब। अगर पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, इतना अच्छा है। तो जगत इस वर्ष में 10 साल वयस में ठाकुर भक्ति विनोद का उसमें अनुराग हुआ और उन्होंने कलकत्ता में उनका मेसो मसाई अंकिल काशी प्रसाद घोष का बाड़ी में जाके लिखा पढ़ा करते थे। और उस समय कोई पेपर में उन्होंने अपना प्रबंध भी छापते थे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर उनका टीचर था, उनका पुस्तक था बोधोदय, ईश्वर निराकार स्वरूप बोल के ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक पोएट्री लिखा था, पोएम कविता। तो उन्होंने जाके पूछा जो आपने ईश्वर को देखा है, आप जो निराकार लिखा आप देखा है क्या? विद्यासागर महाशय ने कहा, बोला नहीं मैं देखा नहीं लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया। जब बंगाल में सिपाही विद्रोह 1858 उस समय ठाकुर भक्ति विनोद अपना पितामह को दर्शन करने के लिए उड़ीसा गया और पैदल जाना पड़ा, साथ में मामी को और पत्नी को लेकर के पूरी पहुंचा। उनका दादाजी उनको देख करके बहुत रोआ और उन्होंने बहुत वृद्ध हो चुका था, अपना हस्त में कुकिंग करके भोजन करते थे, दिन में पूरा दिन भर जॉब करता था, रात को 12 बजे खिचड़ी बनाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाए थे, फिर प्रसाद पाते थे। भजन इतना आसान मत समझो, अगर इतना आसान होता था तो हमारा गोस्वामी लोग चना नहीं खाते थे। एक एक करोड़पति था, आजकल जो करोड़पति उनका सामने कुछ भी नहीं। उन्होंने देखा विषय भजन नहीं होगा, विषय का काम खड्डा में डालना। लेकिन उन्होंने वहां से निकाल करके आए, आप ब्रज में मटका सिल्क नहीं पहनता था, फटा हुआ कपड़ा, वो भी किधर मिल गया तो सही। कोई कोई तो खाली कोपिन पहनते भी रहते थे, खाली लज्जा निवारण, खाने का टेंशन नहीं। हम ज्यादा खाने के दिन ज्यादा सोचते हैं कब प्रसाद मिले। आप लोग करें, हमारा भी यही हाल है, कब प्रसाद मिले। थाली पहले लेके जाते, क्लास इधर चढ़े मैं थाली लेके खा लेता हूँ, जो नीति विरुद्ध है उसमें हम सिद्धांत लगा देते हैं, ये है ये है ये है, जो भी अपना स्वार्थ के लिए। उन्होंने दिन भर भजन करो, एक बार भोजन करो, एक बार भजन करो, दिन भर भजन करो, तो कभी इंद्र चांचल्य होने वाला नहीं है। चुपचाप भगवान का इन्होंने अपना, उनका दादाजी दिन भर कुकिंग अपना भजन, रात को कुकिंग, उसके बाद भोजन। एक दिन उनका दादाजी तापिया में ठेस देकर के नाम जप कर रहे थे, ठाकुर मां से उनको उनका पास आया। उन्होंने कहा जो मैं जो मर जाऊंगा तो आप लोग यहाँ छोड़ के चला जाना, और तुम्हारा वयस जब 27 साल होगा तब तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद कर रहा हूँ तुम बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा। ये जैसे बोला वैसा ही उनका ब्रह्मतल भेद होकर के फट गया, यहाँ उन्होंने चला गया। ठाकुर महाशय ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनको बहुत कृपा किया और उनका चेष्टा से भद्रक का हेडमास्टर मिल गया। उनका पगार था 45 रुपीज, श्री मात्रा करे 45 रुपीज का मतलब जानते हो, 1 रुपया में 1 क्विंटल राइस मिलता था। बोलो अभी कितना मिलता है? 1 क्विंटल राइस लेने के लिए शायद 60 रुपीज किलो है, 6000। तो अभी 45 × 6 चर मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा कितना है। तो उन्होंने भद्रक में रहते समय मॉट ऑफ उड़ीसा इस प्रकार एक पुस्तक को रचना किया। उन्होंने साक्षी गोपाल, पूरी, भुवनेश्वर सब कुछ दर्शन करने के बाद भद्रक में जब उन्होंने आया तब उनका पहला पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था अन्नदा प्रसाद। उस समय उन्होंने मेदिनीपुर में अंग्रेजी विद्यालय में मास्टरी मिला उनको। पहले से ठाकुर महाशय का वैष्णव धर्म में श्रद्धा था। एक दिन किसी कारणवश वहाँ जो मास्टर लोग था वो जाना उससे प्रसंग क्रम में जान पाया कि चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश में जन्म ग्रहण किया है और सबको कृष्ण भक्ति प्रदान किया है। तुम्हें हो जाइया लह परित्यन की है ना भजन इसमें की जाने की बोले जी तुम्हारे धामे जो है शरणागत हो। इसमें उस समय वैष्णव ग्रंथ नहीं मिलता था तो उन्होंने महाप्रभु के बारे में जानने के लिए बहुत उद्ग्रीव हुआ। बाद में जब ठाकुर महाशय का पहला पुत्र का वयस जब 10 मास था तो पहला पत्नी मर गया। फिर उन्होंने दोबारा शादी किया। द्वितीय पुत्री का नाम है भगवती देवी। जब एक बार भगवती देवी भी नवद्वीप में आए थे भक्ति ठाकुर उस समय वृद्ध हो चुके थे। गौरकिशोर दासबाजी महाराज उस समय नवद्वीप में थे तो उन्होंने गौरकिशोर दासबाजी महाराज जब दर्शन किया तो गौरकिशोर दासबाजी महाराज उनको कहा आप नवद्वीप क्यों आए हो, आपको जाके भक्ति विनोद का सेवा करना चाहिए, आपको यहाँ आने का आवश्यक नहीं है। गौरकिशोर दासबाजी महाराज ने कहा। गौरकिशोर दासबाजी महाराज अरे अपना भक्ति विनोद ठाकुर अभिन्न थे। जब कृष्णनगर में उनको मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस समय अपना स्वरूपगंज में आते थे और वहाँ जब गौरकिशोर दासजी महाराज से बैठ करके हरिकथा आलोचना होता था तो उन्होंने कहा ठाकुर महाशय आप यहाँ पर हमारे लिए छई बना दो। तो भक्ति ठाकुर उनके लिए कुटिया बना दिया था और उस कुटिया में गौरकिशोर दासजी महाराज बहुत सारा मटका जमा करके रखते थे इसलिए कुकिंग करने के लिए। वो मटका कहाँ मिलता था, जो आदमी कोई मरता था तो मटका फोड़ता था ना वही से उठा कर ला के रखते थे। एक बार जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज का जो दो शिष्य था उन्होंने किसी कारणवश कोई गलत काम किया तो भक्ति ठाकुर को बुलाया गया इसके विचार करो। तो बोला एक को बोला क्या तुम तीर्थ पर्यटन करो और एक का क्या बोला तुम लौकी के पानी डालो, लौकी का झाड़ है बेगुन का झाड़ है उसमें पानी डालो। तो उन्होंने एक तीर्थ परिक्रमा करा तो निकाल गया जिसको झाड़ में पानी डालने का वो झाड़ पानी नहीं डाला। बोला हम आज इतना दिन हो गया इस मंदिर में रह करके इतना सीनियर हो गया तो हम क्या अभी झाड़ में पानी डालो, ये हम लोग बोलते हैं ना बोलते मंदिर में झाड़ू मारो हम सीनियर है झाड़ू मारेगा क्या, भगवान का सेवा तो जो झाड़ू नहीं मारे चाहो लोगों में पानी नहीं डाला चला गया बाद में उनका अधपतन हो गया। इसलिए भगवान का सेवा जो है आचार्य लोग जिसको जो सेवा देता है उस सेवा को सुष्ठु भाव में हमें निर्वाह करना चाहिए। ठाकुर महाशय चैतन्य गीता नाम में एक ग्रंथ को लिखा और भगवद गीता का रसिक रंजनी भाष्य रचना किया था। कृष्ण संगीत इत्यादि ग्रंथ उन्होंने अपना रचना कृष्ण संगीता जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में ब्रजलीला का माइक जगत का साथ अच्छी तरीके से विश्लेषण करके भक्तों का उस विषय में क्या सीखो नहीं है उसका उन्होंने वर्णन किया श्री कृष्ण संगीता। श्रीमद् भागवत के संबंध अभिधेय प्रयोजन करके श्री भागवतार को मरीचमाला बोल के ग्रंथ लिखा है। श्लोक को कहाँ का किस जगह श्लोक लेकर के संबंध अभिधेय और प्रयोजन इन तीन तत्व को वैष्णव के लिए गौड़ीय कंठ है। बहुत सारे ग्रंथ उनका रचना दिया गया है। तो उन समय कोई भी मायावादी व्यक्ति कुछ भी करे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से खंडन करते थे। रामकृष्ण परमहंस देव उस समय निवास कर जीवित था। जब भक्तिविनोद ठाकुर कलकत्ता में आए तो रामकृष्ण परमहंस देव अपना गीत लिखा, तादेर देखे नयन जले भेसे जाच्चे, इस प्रकार। उसमें इसका नाट्य गिरीश चंद्र घोष का जो गिरीश घोष नाट्य मंदिर गिरीश नाटशाला कलकत्ता समाज है वहाँ पर अभिनय होता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर को बुलाया गया, आप अभिनय आके देखो, कृष्ण लीला अभिनय हो रहा है। तो उन्होंने एक ही जगह से बोला, बार बनिता का द्वारा अभिनीत कोई भी लीला भक्तों को दर्शन नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा बात बोल दिया। हम लोग भी कभी कभी क्या खुश होता, हम लोग देखने के जाए, अरे वहाँ हो रहा है चल जाएंगे, वास्तव में नहीं देखना चाहिए। जो भगवान का भक्त लोग जो लीला का अभिनय करेगा, साधारण व्यक्ति जो अभिनय करेगा उसमें अंतर है। साधारण व्यक्ति की इच्छा क्या रहता है, पैसा। भक्तिविनोद ठाकुर को नोबेल क्यों नहीं मिला? रविंद्रनाथ ठाकुर इससे ज्यादा जानते थे क्या भक्तिविनोद ठाकुर से? भक्तिविनोद ठाकुर अपराकी जगत का कवि था, रविंद्रनाथ ठाकुर प्राकृतिक जगत का कवि था। इसको नोबेल मिल गया, इसको नोबेल नहीं मिल गया। इनसे पहले इन्होंने जो भी रविंद्रनाथ ठाकुर जो भी वस्तु लिखा उससे पहले भक्तिविनोद ठाकुर लिख चुका था, वो सब कुछ लिखा था, लेकिन फिर भी इनका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनका लेखनी प्राकृतिक जगत के लिए नहीं था, अप्राकृतिक जगत के लिए था। और अप्राकृतिक जगतवासी इनको आदर करेगा, प्राकृतिक जगतवासी इसको आदर नहीं करेगा। जो केदारनाथ दत्त वर्ग के चैतन्य मठ एक बुक है वो निकाला, केदारनाथ दत्त, उसमें ये सब दिया गया है। तो जो इतना सारे ग्रंथ उन्होंने रचना किया अलग अलग वस्तु, अगर चैतन्य शिक्षामृत अगर उनको पढ़ोगे, भक्तिविनोद ठाकुर का लिखा में है चैतन्य शिक्षामृत, तो दुनिया में ऐसा कोई भी सिद्धांत तो नहीं जो आप नहीं जान सकते हो। जैव धर्म वर्ग के ग्रंथ है, इस ग्रंथ अगर पढ़ोगे ब्रह्मांड में कोई ग्रंथ पढ़ना आपको शेष नहीं रह जाएगा। इसे जो तत्व सूत्र आमना सूत्र तत्व विवेक आप फॉरेन में जाके लेक्चर दे के आओ, जो सब सिद्धांत दिया गया है। ये सब ग्रंथ उन्होंने रचना किया था। जो ग्रंथ दुर्लभ है, सिद्धांत दुर्लभ है, इतना हरा हरा भरा, मतलब हरा भरा खेत। तो हमारा जो गौड़ीय धारा है ना, गौड़ीय धारा हरा भरा खेत है, इसमें किधार भी सूखा वस्तु है ही नहीं, सब हरा भरा है। जिधर दृष्टि डालो आपको जो भी वस्तु चाहिए इसमें से निकाल के ले सकते हो। उन्होंने सज्जन तो सुनी पत्रिका किया, बहुत सारे किया उन्होंने। भगवान का लीला विलास का जो मायापुर धाम है, भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा उनका प्रचार किया गया है। जब मायापुर को कोई जानते नहीं था, कोई नहीं जानता था, महापुर का जन्म स्थान आज भी झगड़ा चलते हैं। कोई बोलता है नवद्वीप टाउन है, कोई बोलता है मायापुर है। अभी आज भी जाओ नवद्वीप में झगड़ा चालू है। ये इंग्रेज लोग आया, ये इंग्रेज लोग आकर के यहाँ बोलते हैं जन्मस्थान, हम लोग बोलते देखो ये जन्मस्थान है महाप्रभु का, ये शिवा संगन है, ये जन्मस्थान, यहाँ शादी हुआ था, ये विष्णुप्रिया का घर है, सब वहाँ पर दिखा रहे हैं। और लोग इंग्रेज लोग आके बोलता है यहाँ यहाँ ऐसे अभी भी चल रहा है, यहाँ भी इतना प्रकट रूप में नहीं, छिपा छपा। तो सबसे पहले उन्होंने मायापुर का मैप बनाया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उन्होंने मैप बनाया। मैप बनाने के बाद वो मैप को पहले प्रचार किया पत्रिका में, फिर उनका पौराणिक इतिवृत्ति जो कुछ भी है वो छाप करके नवद्वीप धाम महिमा बोल के एक बुक लिख के उन्होंने प्रचार किया। बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी उनको जब लाया गया तो उन्होंने उस जगह में आकर के झुंडी में आते थे, उन्होंने कभी भी चल के नहीं आ सकते थे, तो झुंडी से कूदी मारा, बोला ये जगह है महाप्रभु का बार प्रदेश। गौरव आविर्भाव भूमेशता निर्दिष्ट सज्जन प्रिय, निर्दिष्ट सज्जन प्रिय, सज्जन मतलब वैष्णव प्रिय। ये भक्तिन ठाकुर का अवदान कितना ही बोलो समापन नहीं होगा। हमारा बहुत सारे काम है भौतिक जगत का, इसलिए मुझे समापन करना पड़ रहा है। भौतिक जगत का कुछ काम पड़ गया आज, अरे जरूरी भी है, संसारी हूँ, आवश्यक भी है, नहीं तो नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। ठाकुर भक्ति विनोद की
गया काशी मथुरा वृंदावन मायापुर कोई नहीं दिखता।